चांद देखो और रोजा रखो और चांद देखो और इफ्तार करो। चांद देखने की कई शर्त है कोई, या इसका सिर्फ महीनों का एतबार, महीने की जो दिन है उनका एतबार करने के लिए चांद की बात की गई है?
रवायत पर गुफ्तगू से पहले असल मसले को देख लीजिए, यानी दीन में जो इबादात मुकर्रर की गई हैं, मसलन नमाज है, तो नमाज को जो दुनिया में अल्लाह का नज़म चल रहा है सूरज की गर्दिश का, उसके लिहाज से मुकर्रर किया गया
है। ठीक है,
आपको बताया गया कि आपको फजर के वक्त इतनी नमाज पढ़नी है, जोहर के वक्त इतनी नमाज पढ़नी है, असर के वक्त इतनी नमाज पढ़नी है। ये औकात कोई मजहबी हैसियत नहीं रखते, औकात पहले से मौजूद है। यानी फजर मजहबी लिहाज से तलू नहीं होती, वो तो कायनात के निजाम के लिहाज से होती है।
हाँ सही है, बिल्कुल ठीक है।
वो मेरे लिए भी होती है एक मुसलमान की हैसियत से, एक बुद्ध के लिए भी होती है, एक हिंदू के लिए भी होती है, एक मसीह के लिए भी होती है। यानी दुनिया का नज्म है जो चल रहा है। आपने कोई इबादत मुकर्रर करनी है और अगर वो वक्त के लिहाज से मुकर्रर करनी है तो जो दुनिया में नज्म मौजूद होगा उसको आप बुनियाद बना के कहेंगे कि आप फजर के वक्त दो रकतें पढ़ लीजिए, आप इशा के वक्त पढ़ लीजिए। आप देखिए कुरान मजीद में भी बिल्कुल औकात के लिहाज से इसी तरह इन औकात का जिक्र आ गया है।
ठीक है,
मिन कबल सलातिल फजर
व मिन बाद सलातिल
इशा, इसी तरह से बिल्कुल जिक्र आ गया उसका। गोया जो नज्म शमसी कायम है जिसके तहत दिन ढलता है, जिसके तहत तुलू होता है। अच्छा, वो तुलू मेरे लिए और वक्त में होता है, इंडोनेशिया में और वक्त में होता है, मराकश में और वक्त में होता है। यानी जो नज्म चल रहा है ऐसा नहीं है कि मेरे हाथ में दे दिया गया है कि मैं फजर का एक मजहबी वक्त मुकर्रर करूं और उस पर मैं नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह ताला के उस बनाए हुए कानून के मुताबिक फजर होती है। ये जो औकात है ये आपकी नमाज के लिए है।
ठीक है,
कुछ चीजें वो हैं कि जिनका ताल्लुक कमरी महीने के साथ है और उसमें बड़ी हिकमत है, क्योंकि रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें आपको रोजे रखने हैं। अगर दुनिया में मुकर्रर कर दिया जाता तो जो गर्दिश होती है और जिससे मौसम बदलते हैं वो एक गिरोह के लिए एक ही हो जाते और दूसरे के लिए दूसरे हो जाते। तो इसलिए इसमें ज्यादा बेहतर यही था कि शमसी कैलेंडर की बजाय कमरी तरीका इख्तियार किया जाए। कैलेंडर दोनों दुनिया में पहले से मौजूद है।
ठीक है,
यानी शमसी कैलेंडर भी मौजूद है, शमसी तकवीम भी और कमरी तकवीम भी मौजूद है।
ठीक,
अब मिसाल के तौर पर चीन है तो चीन में सदियों से कमरी तकवीम ही है।
ठीक,
उसके लिहाज से जिसको आप चाइनीज न्यू ईयर कहते हैं उसी के लिहाज से मुनक्द होता है, यानी कमरी तकवीम के लिहाज से होता है। तो दोनों तकवीमें दुनिया में हमेशा से मौजूद है, इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं।
ठीक है,
इनके तहत महीने भी मुकर्रर हैं, वो आते रहते हैं जाते रहते हैं। लोग खा वो मसीही हों, खा वो बुद्ध हों, खा वो हिंदू हों, वो इन तकवीमों को सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से दुनिया बनी है नहीं जानते कब से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें सबसे बल्कि नुमाया जो तकवीम है वो कमरी तकवीम ही है, क्योंकि उसके आसार नमूदार हो जाते हैं। चांद हिलाल से बदर घटता है, फिर उसके बाद घटता बढ़ता है, तो वो तो गोया आसमान के ऊपर उसके आसार नमूदार होते हैं। शमसी तकवीम के साल का हिसाब लगाना पड़ता है। यही वजह है कि आपके इलम में है कि उसमें फिर लीप का साल आता है, कुछ घंटे बढ़ाने पड़ते हैं, कुछ दिन बढ़ाने पड़ते हैं।
बिल्कुल ठीक,
तो उसकी तयन के लिए तो हिसाब किताब की जरूरत पड़ती है। ये आसमान के ऊपर अपने आसार से खुद ही नमूदार होता रहता है। रमजान इसके लिहाज से मुकर्रर किया गया, हज इसी के लिहाज से मुकर्रर किया गया।
ठीक है,
उमरे का तो कोई वक्त नहीं है ना, आप जब चाहें जा कर सकते हैं, लेकिन हज के लिए चूंकि 10 ज़ुलहज का वक्त मुकर्रर किया गया है, या वो 5 दिन मुकर्रर किए गए हैं जिसमें आपने मिना में जाना है, आपने अरफात में जाना है, आपने मुजदलफा में आना है, आपने कुर्बानी करनी है, आपने कंकर मारने हैं, तो मनासिक के लिए एक वक्त मुकर्रर किया गया है, वो भी कमरी महीने के लिहाज से मुकर्रर किया गया। पहली बात बुनियादी ये समझ लेनी चाहिए कि खुद कमरी तकवीम या शमसी तकवीम इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं।
ठीक है, बिल्कुल सही।
एक चीज खुदा के निजाम में मौजूद है, उससे मुतल्लक करके आप पर इबादात लाजिम कर दी गई।
ठीक है,
अब नमाज पर आ जाइए। नमाज में क्या होता था, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आप इसके सिवा क्या कर सकते थे कि आप निकले और निकल के जाके साया देखें। आपको मालूम है, आपको मुअत्ता इमाम मालिक में रवायत मिलेगी कि जुमे के दिन एक टाट का टुकड़ा मस्जिद नबी की छोटी सी जो देहाती दीवार थी उस पर डाल दिया जाता था और देखा जाता था कि उसका साया सब ढल गया है, उससे जुमे के वक्त का ऐलान कर दिया जाता था। यानी गोया मुतय्यन करने का तरीका क्या था, एक टाट डाल दे। अभी भी आपने देखा होगा कि किबले की तयन के बारे में बाज़ वक़्त आपको बताया जाता है कि आज आफ्ताब किबले के ऊपर होगा, आप एक लकड़ी गाड़ दें, एक छड़ी गाड़ दें और उसके साये के लिहाज से किबले को मुतय्यन कर।
बिल्कुल सही है।
गोया ये वो चीजें हैं कि जो दुनिया के अंदर हमेशा से मौजूद है। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये तरीका इख्तियार किया जाता। अब जरा कमरी महीने के ऊपर आ जाइए।
ठीक है,
तो कमरी महीने की तयन के लिए उस जमाने में एक इल्मी चीज थी जो बिल्कुल मानी हुई थी। वो इल्मी चीज क्या थी कि ये महीना 30 से ज्यादा का नहीं हो सकता।
ठीक है,
यानी ये बात इल्मी लिहाज से इंसान जान चुका था, इसके बारे में कोई दो राय नहीं थी कि 30 दिन से ज्यादा का ये महीना होता ही नहीं है। चांद की गर्दश का सदियों मुताला करने के बाद इंसान ये जान चुके थे कि ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी वक्त 31 का हो जाए।
ठीक है,
तो 30 के बारे में ना इसका कोई सवाल था कि मुतय्यन किया जाए। 30 दिन पूरे हो गए तो ईद भी हो जाएगी, रमजान भी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ये तजर्बे से मालूम हो चुका था, पहले से मालूम था, तजर्बे से मालूम हो चुका था कि 29 पर भी चांद निकल आता है।
ठीक है,
तो कमरी महीना है ना, यानी जिस तरह शमसी निजाम सूरज से मुतल्लक है तो ये चांद से मुतल्लक हो गया, तो ये आम तजर्बे से मालूम हो चुका हुआ था।
ठीक है,
ये इतनी बात वाज़ेह हो गई,
बिल्कुल हो गई।
अच्छा, अब फिर नमाज पर जाइए। दौरे जदीद में क्या हुआ है? दौरे जदीद में हमने नमाज के औकात की तयन करके कैलेंडर बना दिया।
बिल्कुल सही है,
अब ना साया देखने की जरूरत है, ना बाहर जाने की जरूरत है। यानी मुझे ये मालूम है इस वक्त भी कि मगरब की नमाज कब होनी है।
बिल्कुल,
कैसे मालूम हुआ है? यानी मुताला और मुशाहिदा करने के बाद साइंसी तरीके पर हमने एक आला इजाद कर लिया है।
अब मुझे सूरज नहीं देखना, मैं इसको देख लूंगा,
इसको देख लेंगे।
ठीक है,
तो गोया होता क्या है? होता यह है कि जो कायनात के अंदर मामलात हो रहे होते हैं उन तक अपनी रसाई के लिए कभी हमारे जराए बराह रास्त होते हैं, कभी हम बिलवास्ता जराए इख्तियार करते हैं।
ठीक है,
इस मामले में हम यही किए।
बिल्कुल,
अगर कभी आप किसी मस्जिद में जाए तो वहां जाके देखें, जब मुअज्जिन अजान देता है तो वो बाहर निकल के ये नहीं देखता कि सूरज गुरूब हो गया या नहीं हो गया, या फजर का वक्त हो गया या नहीं हो गया। वहां एक कैलेंडर लटका हुआ है, वो माहिरीन ने मुकर तय कर दिया है। आप जानते हैं कि किन माहिरीन ने किया था? अंग्रेजों के जमाने में बहरिया ने किया था। इसलिए कि जब आप समंदर में, खुले समंदर में होते हैं, तो वहां जो फजर के आसार हैं, वहां जो गुरूब के आसार हैं, वो ज्यादा नुमायां होते हैं,
उफक ज्यादा।
इसीलिए बहुत से लोग बहस करना शुरू कर देते हैं उसमें कि 10-15 मिनट का फर्क पड़ गया है। वजह क्या है? वजह वही है कि हम यहाँ पर आलूदा फजा में होते हैं। जो कैलेंडर बनाया गया है वो असल में खुली फजा में समंदर के अंदर जहाज को खड़ा करके बनाया गया है।
ठीक है,
उनके जमाने का बना हुआ है,
ठीक,
वही चला आ रहा है। लोग उसके ऊपर गुफ्तगू करते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। उस कैलेंडर को देखता है मुअज्जिन और उसके बाद घड़ी देखता है हाथ,
बिल्कुल,
और अजान भी देता है। तो क्या हुआ? हुआ ये कि कुदरत ने जो नज्म बनाया था उस तक रसाई के जो जराए आपके पास मौजूद थे, आपने उनको एक तकनीकी आले में तब्दील कर ली।
ठीक है,
अब आप उस पर एतमाद करते हैं।
ठीक,
तो कमरी महीने में जो सवाल पैदा हुआ, वो सवाल ये पैदा हुआ कि 29 के महीने का कैसे तयन किया जाएगा। भाई उस जमाने में इसके सिवा क्या तरीका था कि आप बाहर निकलें और देखें कहीं चांद तो नहीं निकला है? यानी 30 के बारे में तो बहस ही नहीं थी।
सही है,
29 का तयन कैसे करेंगे? चांद निकलेगा,
चांद देखकर ही करेंगे,
इसके सिवा कोई तरीका नहीं था,
कुछ नहीं था।
अच्छा, अब जदीद दौर में आके साइंसी लिहाज से हम इस पोजीशन में आ गए कि हम आलात की मदद से और हिसाब किताब की मदद से बता सकते हैं चांद कब निकलेगा, बता सकते हैं वो कब पैदा कब होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अपनी घड़ी से ही बता सकते हैं।
ठीक है,
तो सवाल ये है कि अब जब सूरज देखने आप नहीं जाते, साया देखने के लिए आप नहीं जाते, तो चांद देखने क्यों जाते हैं? जो जदीद साइंस है उसने वही काम चांद के साथ भी कर दिया है जो सूरज के साथ करके आपने घड़ी हाथ पे बांधी थी या मस्जिद में लगाई थी, एक ही काम हो चुका हुआ है। यानी वहां आपकी रसाई उसी टाट तक थी जिसका साया देख के आपने जुमे का ऐलान करना है या जोहर का ऐलान करना है। आप बाहर निकलेंगे, मुझे अब भी याद है, मैं चूंकि देहाती पस मंजर रखता हूं, कि हमारी वालदा आखिर उम्र तक जब तक देहात में रही कभी इसको पसंद नहीं करती थी कि घड़ी से वक्त देख के रोजे का एहतमाम करें। वो बाहर निकलती थी और तारों को देख कर बता देती थी, इसलिए कि उस जमाने में उनकी यही ट्रेनिंग।
ठीक है,
यानी हम लोग जब घड़ियां आ गई कुछ हमारे उसमें, तो हम कोशिश करते थे कि बताएं कि अभी नहीं वक्त हुआ, लेकिन वो कहती थी कि नहीं मैं तो जाऊंगी बाहर देखूंगी, जाके सहन में जाती थी और जाके तारे देखकर बताती थी कि फजर का वक्त हो गया या सहरी का वक्त हो गया, जो भी औकात होते हैं। और उसके लिहाज से सारे देहात के लोग यही काम करते थे। आपके ये इल्म है कि पुराने जमाने में लोग तारों को देखकर समंदरों में सफर करते थे, सहराओं में सफर करते थे। अच्छा, उसके बाद आलात ईजाद हो गए और वो बताने लग गए। तो हर मामले में यही चीज हो रही है। ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि बाकी तमाम मामलात पे हम इन चीजों को तस्लीम कर लेते हैं और चांद के बारे में तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त साइंस पोजीशन
शायद इसलिए तैयार नहीं है जावेद साहब, कि वो वही वो जो जो रिवायत जो जिसका
मैं उस पर आ रहा हूँ, मैंने इसीलिए अर्ज किया था कि रिवायत को भी अलग कर दीजिए, पहले ये देखिए कि हमारा रवैया इस मामले में कैसा है।
ठीक,
यानी ये देखना चाहिए कि बाकी तमाम मामलात में हमने जो आलात ईजाद हो गए हैं, जो साइंसी इक्तिशाफात हो गए हैं, जो सहूलतें मयसर आ गई हैं, उनके लिहाज से फैसले करने शुरू कर दिए और शबो रोज करते हैं, سب سے بڑی چیز جو پانچ وقت آپ کو پڑھنی ہوتی ہے نماز ہے، اس کی اذان ہے، اس کی اقامت ہے، اس کی جماعت ہے، اس کے سب فیصلے اسی طرح کر رہے ہیں، تو دیکھنا چاہیے کہ یہاں ہم غلطی تو نہیں کر رہے کہیں.
ٹھیک،
میرے نزدیک یقیناً غلطی کر رہے ہیں، یہاں پر بھی اسی علم پہ اعتماد کرنا چاہیے.
ٹھیک،
اچھا اب روایت پر آ جائیے. روایت کو لوگوں نے کبھی غور کے ساتھ پڑھا ہی نہیں کہ اس میں مسئلہ کیا زیر بحث. اس میں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے کیسے نہیں رکھنا، مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے. قرآن مجید نے جب اوپر کا حصہ ہے نا جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے نیچے پھر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ،
فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
اس میں یہ آتا ہے
فلیصم،
فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی جس شخص کی زندگی میں بھی یہ مہینہ آ جائے اسے اس پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے.
ٹھیک،
پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے. مذہبی ذہن آپ جانتے ہیں کہ منطق چھانٹتا ہے بعض اوقات، اس میں تکشف بھی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ پورے مہینے کا مطلب یہ لوگ یہ لے لیں کہ ہر حال میں 30 روزے رکھنے. تو دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، فرمایا الشہر 29، بھائی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، قمری مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند نکل آئے تو روزہ رکھ لیا کرو،
اور چاند نکل آئے تو افطار کر لیا کرو.
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 30 پہ اصرار نہ کیا کرو.
ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
یہاں چاند دیکھنا زیر بحث ہی نہیں ہے، جو ذریعہ اس وقت موجود ہے.
ٹھیک،
یعنی اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو یہ فرماتے کہ بھائی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اگر سائنسدان کہیں کہ چاند پیدا ہو گیا ہے تو روزہ رکھ لیا کرو.
ہاں صحیح ہے،
یعنی یہ بات ہے جو کہی گئی ہے. اس میں الشہر 29 کا پہلا ٹکڑا جو ہے وہ بعض راویوں نے حذف کر دیا ہے. اب لوگ آگے کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس سے یہ استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر حال میں آپ کو چاند دیکھنا ہے. چاند دیکھنا نہ دیکھنا روایت میں زیر بحث ہی نہیں
ہے.
جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 30 پر اصرار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، پورے مہینے کا مطلب 30 روزے رکھنا نہیں ہے. اگر چاند نظر آ جائے تو مہینہ چونکہ 29 کا بھی ہوتا ہے تو تم رمضان بھی شروع کر سکتے ہو، عید بھی کر سکتے ہو. یہ بات بیان کی گئی ہے. اب مہینہ 29 کا ہوتا ہے اصل میں یہ چیز ہے، اور 29 کے مہینے کو ماننا چاہیے یہ دوسری چیز ہے. 29 کے مہینے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس وقت چاند کے ذریعے سے چلتا تھا، اب کسی اور ذریعے سے چل. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چاند دیکھنا اتنا اہم ہے تو 30 پر کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا وجہ ہے؟
اس لیے کہ وہ تو مانی ہوئی بات ہے نا کہ 30،
یہ بھی مانی ہوئی بات ہو چکی ہے. یعنی وہ مانی ہوئی ہے صدیوں کے تجربے کی وجہ سے.
ٹھیک،
یعنی وہ کیسے مانی ہوئی بات ہے؟ اس کے حق میں وہی نازل ہوئی. وہ بھی اس لیے مانی ہوئی ہے کہ صدیوں سے انسان نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ قمری مہینہ کبھی 30 سے آگے نہیں بڑھتا، تو علمی طور پر طے ہو گیا. آپ نے کبھی دیکھا کوئی رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہو کہ 30 میں بھی ہم نے چاند دیکھنا ہے، کیونکہ چاند دیکھے بغیر رمضان نہیں شروع ہو سکتا.
ٹھیک، کوئی
بیٹھے
نہیں ہوگا.
اس لیے یہ بالکل بےمانی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قمری مہینے میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، قمری مہینے کے بارے میں علمی طور پر معلوم ہے کہ وہ 29 کا بھی ہوتا ہے 30 کا بھی ہوتا ہے. 30 کے معاملے میں بحث نہیں ہوتی. 29 سے متعلق قدیم زمانے میں تعین کا کوئی طریقہ اس کے سوا نہیں تھا کہ آپ چاند دیکھ لیں.
ٹھیک،
اچھا آپ ذرا اور پیچھے جائیے.
جی،
یہ جو چاند دیکھنے کا عمل ہے اس کو خود آپ کے یہاں کیا اہمیت حاصل ہے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند نہیں دیکھا، مدینے کے لوگوں نے بھی چاند نہیں دیکھا. باہر سے کوئی آدمی آیا، انہوں نے کہا ہمارے یہاں دیکھ لیا گیا چاند.
ہاں، آپ نے اعلان فرمایا،
ہو گئے روزے، ہو گئے. اچھا، مسلمانوں کے یہاں جو فقہاں ہیں ان میں امام و حنیفہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی سلطنت ساری دنیا میں ہے اور کسی ایک جگہ کے اوپر چاند نظر آ گیا تو آپ ساری دنیا کے لیے اعلان کر سکتے ہیں.
ٹھیک،
آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ساری دنیا ہوگی اس میں تو آپ جانتے ہیں سائنسی لحاظ سے کہ ہو سکتا ہے کہیں چاند نکلا ہو، کہیں نہ نکلا،
کہیں نہ ایسا ہو سکتا ہے.
اچھا، اب مزید آگے بڑھیے. آپ جس وقت 1947 میں پاکستان نہیں بنا تھا، ہندوستان میں تھے. اگر وہاں کوئی حکومت قائم ہو جاتی تو وہ پورے ہندوستان کے لیے اعلان کرتی یا نہ کرتی؟
کرتی، بالکل کرتی.
اچھا، اب آپ نے ایک لکیر کھینچی اور آپ کہتے ہیں پورے پاکستان کے ہم الگ اعلان کریں گے، افغانستان میں الگ اعلان کریں گے. تو کبھی آج راہ کرم اپنی اداؤں پر غور کر لیا کریں، کیا کر رہے ہیں آپ؟
ٹھیک،
یعنی اس میں سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. آپ نے فرض کر لیجئے کہ یہ طے کر لیا کہ ہم مکے سے اعلان کر دیں گے، کر دیں ساری دنیا کے لیے، کوئی غلط نہیں ہے. آپ نے طے کر دیا کہ سائنسدان اس معاملے میں اعلان کیا کریں گے، بتا دیں گے. اعلان ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ وہ کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں، وہ آپ کے یہاں آویزہ کر دیا جائے گا، اس کے مطابق آپ رمضان بھی ہونے دیجئے. آپ دیکھیے اس سے کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور بالکل غلط ہوتی ہیں. بھائی اگر تو دین کا کوئی حکم مشکل پیدا کر رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، کہ اللہ کا حکم ہے ہمیں مشکل کا ازالہ کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن ہم خود مشکل پیدا کر لیں. میں نے دیکھا امریکہ میں, میں نے دیکھا یورپ میں, یعنی بہن کے ہاں عید ہو رہی ہے, بھائی کے ہاں روزہ رکھا جا رہا ہے. آپ نے اس ساری تقریب ہی کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملہ سائنس سے متعلق ہے. جس طرح گھڑی کی ایجاد جو ہے یہ مولوی صاحب نے نہیں کی.
صحیح ہے.
جن لوگوں نے یہ گھڑی ایجاد کر کے آپ کے ہاتھ پر باندھ دی ہے اور اس کو دیکھ کے اطمینان سے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں, اسی طرح جن لوگوں نے یہ اب طے کر دیا ہے کہ 29 کا چاند کب طلوع ہوتا ہے یا پیدائش کب ہوتی ہے, میرے نزدیک تو پیدائش کے لحاظ سے کیلنڈر بنا کے دے دینا چاہیے.